الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. محترم حاضرین و خواتین، میں پہلے ہی مرحلے بھی عرض کر دوں کہ میں تقریر نہیں کرتا، قرآن اور حدیث کا درس دیتا ہوں تھوڑا سا. اس لیے تقریر کی توقع نہ کیجیے گا، بلکہ میں کچھ باتیں درس کے انداز میں خیر و شر کے مسئلے سے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ موضوع کچھ فلسفیانہ سا ہے، اس وجہ سے یہ عرض کر دینا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں. اگر میرے طرز بیان سے آپ کو کوئی دلچسپی نہ ہو تو مجھے معذور خیال فرمائیے گا. کوشش کیجیے گا کہ جو باتیں مفید ہوں ان سے فائدہ اٹھائیے، اور اگر کوئی بات مفید نہ ملے تو اس کو میری قبیلگی پر معمول کر کے نظر انداز فرما دیجیے گا. احسان کے دباؤ وفق پر جب عقلی بلوغ کی قدیں نمایاں ہوتی ہیں تو میرا خیال یہی ہے کہ اس کو سامنے سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ یہ سوال آنا چاہیے کہ میرے لیے کیا خیر ہے اور کیا شر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ میں دنیا میں خود در نہیں آیا ہوں، بلکہ کسی بھیجنے والے نے مجھے بھیجا ہے، اور جب اس نے بھیجا ہے تو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ میں بالکل لاوالیانہ زندگی بسر کروں، بلکہ یقین ہے اس لیے بھیجا ہے کہ میں صحیح اور اس کی پسند کے مطابق تو یہ سوال بڑی اہمیت کے ساتھ آدمی کے سامنے آتا ہے، آنا چاہیے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے میرے لیے. لیکن ہمارے اندر عظیم اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جن بیچاروں کو اپنے پیٹسن کی ضرورت ہے، کبھی سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی کہ وہ اس طرح کے مسائل پر غور کرنے کی کوشش کر بس زندگی گزار دیتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو اس کی فرصت بھی ملتی ہے ان کے لیے بھی اتنی دلچسپیاں ہیں، اتنے مسائل ہیں، اتنے حالات ہیں جو ان کے اندر اس پر فلسفیانہ مسئلے کو لے کے بیٹھنا ایک بڑا شاق لگتا ہے. جبکہ ٹی وی بھی دیکھا جا سکتا ہے، ناول بھی پڑھے جا سکتے ہیں، تو فلسفے کو جہاں میں اپنے آپ کو کون ڈالے. لیکن اگر آپ یہ یاد رکھیے کہ بہرحال جو مسئلہ ہے وہ تو مسئلہ ہے، اس پر تو غور کرنا ہی پڑتا ہے. جو لوگ کی زندگی کے اصل مسئلے کو ٹالتے ہیں، اس سے واضح نہیں کرنا چاہتے، اس کو طے کر کے اس میں سے اس چیز کو جو اختیار کرنا چاہیے اختیار کرنے کا حوصلہ نہیں کرتے، بلکہ نظر انداز کر کے لاوالیانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، बात याद रखे पहली, वो अगर जाविद बन जाएंगे अपनी जगह पर मच्छर बन जाएंगे तो दुनिया जाविद नहीं बन जाएगी। जमाना हर वक्त मुतगयर है, हर वक्त नजरियात बदल रहे हैं, असूल बदल रहे हैं, फैशन बदल रहे हैं, तरीके जिंदगी बदल रहा है, जिंदगी के हर शोबे में मुतल्लक ऐसे ऐसी तब्दीलियां हो रही हैं कि जिन तब्दीलियों को अगर आप नजरअंदाज करते रहे और उनमें से खैर और शर को मुंतखब करके जो सही है उसको इंतखाब करने का हौसला न रखें तो इसका नतीजा यह नहीं होगा कि जमाना रुक जाएगा। आप रुक जाए मगर जमाना नहीं रुकेगा, वो तो चलता रहेगा। फिर शुतुरमुर्ग के मुतल्लिक यह सुना है कि जब वो तूफान आता है तो अपना असर रेत से छुपा लेता है और समझता है तूफान गुजर गया, लेकिन जाहिर है कि उसके सर छुपा लेने से तूफान तो नहीं गुजर जाता बल्कि तूफान इस तरीके से गुजरता है कि हर चीज को पाबाल करता गुजर जाता है। तो ये मसला ऐसा है कि इस मसले से आप तहवाल नहीं बरत सकते। हर हाफिज को, हर बालक को, हर सैयदैन आदमी को जो जिंदगी की कदर कीमत और अहमियत से वाकिफ है, यह उसके ऊपर वाजिब होता है कि वह हमेशा ये गौर करता रहे कि बदलती हुई जिंदगी में क्या चीजें हैं कि जो हक है सही है मुझे अख्तियार करना है और क्या चीजें ऐसी है कि जो बातिल है और मुझे उन्हें रद्द करना है। आम आदमी को भी इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन आप अगर आप जो जिंदगी के मात में हिस्सा लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं याद करना चाहता हूं कि उनके लिए जिंदगी का सबसे ज्यादा अहम मसला यही है। यही वजह है यानी फलसफा ने भी शुरू ही से इस पहलू पर, इस मसले पर बड़ी संजीदगी के साथ हमेशा और किया है और आले मजहब ने भी इस पर पूरी वजाहत के साथ और तफसील के साथ बात की। सक्रात के जमाने से पहले जो फलसफी गुजरे उन्होंने भी इस पर बात की है। सक्रात का तो समझिए कि खास मौजूद ही रहा है। अफलातून ने सबसे ज्यादा तफसील के साथ बात की है, अरस्तु ने भी इससे बात की है, रेनेसिस के दौर के फलसफियों ने भी इसको अपना मौजू बनाया है और लाख और कांटने से इतनी आला दर्जे की बातें की है कि आप पढ़िए तो आपको हैरत होगी। इस जमाने के फलसफी अब ये जो मातियात का दौर है, इस मातियात के दौर में उनको फलसफी कहना तो मौजू नहीं, लेकिन बहरहाल उन्हें भी इस सवाल से अपने नुकते नजर से गौर करना पड़ता है। इसी तरीका से अगर मजहब की लाइन को देखिए तो सैयदना मसीह और सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अगर चलिए तो हजरत इब्राहिम, हजरत नूह से लेकर के हजरत आदम तक पहुंचिए तो सब ने इस मसले को पूरी वजाहत के साथ बयान किया है। इसी तरीका से हमारी इस दुनिया के इस हिस्से में जो लोग के मलाई के बारी बने हुए बने हैं, कृष्ण हो, बुद्ध हो और रजस्व हो, इन तमाम लोगों ने वही समझ लीजिए कि इस मौजूद से सबसे ज्यादा हमने इसके साथ बैठ की। यह मैं वादा करना चाहता हूं कि फलसफे का और मजहब का मौजूद है, मजहब भी जिंदगी के तमाम अहम हकायक से तारुफ करता है और फलसफा भी, इन दोनों का मौजू अपने तक में एक ही है। तो सब ने इस पर बहस की है। मैं इस सोबत में मुख्तसर सोबत मेरे लिए अखलाकियात के मौजू पर कोई जामे और वसी उतराब बहस करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर कुछ ऐसी बातें आपके सामने अर्ज करने की कोशिश करूंगा कि आपको उनके नजरियात में जो सब खला मुझे नजर आता है वो भी मैं आपके सामने कुछ वादा करने को सुनूंगा। उसके बाद ये बताऊंगा कि हम और आप किस मजहब के पैरो हैं, यानी इस्लाम। उसके मजहबी सही पर यानी कुरान मजीद ने हर मतलब क्या सबूत दिया है और वो कितना मक्कम, कितना वसीउल इतराब, कितना हावी, हर पहलू से हर खला से बिल्कुल पाक। पहले फलसफा के नजरियात को अगर समझने को आप समझने के लिए समझना चाहें तो उसको दो सवालों के अंदर समेटा जा सकता है। इससे मालूम हो जाएगा कि क्या 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 करो। एक सवाल तो यह कि क्या खैर शर उस मुस्तकिल अख्तार है, अलग अलग मुतबैयत इनके अलग अलग वजूद है, या ये है कि ये एक इजाफी और रिलेटिव चीज है। ये पहला वह सवाल है। इसमें मालूम होता है कि दो ग्रोह हैं। एक ग्रोह तो कहता है कि मुस्तकिल अख्तार है, खैर भी अलग मौजूद है, शर भी अलग मौजूद है, दोनों का अलग अलग वजूद है, अलग अलग दिक्कत। दूसरा कहता है कि ये इजाफी चीज है, एक चीज हालात के साथ खैर भी बन जाती है, नियतों और इरादों का भी इस पर असर पड़ता है, और वही चीज हालात के साथ माहौल के तगैयुर से शर भी बन जाती है। तो अगर ये दो ग्रोह अलग अलग बन जाते हैं, एक तो जो है उसको उनको मुस्तकिल मानता है, दूसरा ग्रोह जो है उसको इजाफी मानता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या हर शर ये फितरी और जिबिल्ली वजूद है, इनका फितरत और जिबिल्लत भी पाए जाते हैं इन्हें और इन बार, या ये है कि अकल जो है वो पैदा करती है अपने तजर्बात से, मुआयना करती है कि क्या चीज खैर है और क्या चीज शर है। इस तरीके से भी दो ग्रोह पैदा हो जाती है, या देखो है चार ग्रोह बन गए बनते। एक ग्रोह जो है उसको मुस्तकिल अख्तार कहते मानता है, दूसरा ग्रोह जो कहता है कि इजाफी चीज है, तीसरा ग्रोह कहता है कि फितरी हुई बिल्ली चीज है, और चौथा ग्रोह यह कहता है कि ये अकल के और तजर्बे के नतीजे में चीज पैदा होती है। हम जानते हैं कि तजर्बे के लिए खैर है, ये तजर्बे के लिए शर है। अब यह है कि इन चारों स्कूलों को, और भी स्कूल है लेकिन मैंने बड़े बड़े स्कूल सिर्फ प्रस्ताव किया ताकि मैं उनका इहाता कर सकूं, तो इसके ऊपर ये और करना पड़ेगा कि इसमें से किसका ख्याल जो है उसमें क्या खला है और क्या खूबी है। अब अगर सबसे पहले ग्रोह को लीजिए ने जो कि खैर शर दोनों को मुस्तकिल मानते हैं, अल्लाह का उनका वजूद है, तो उनके मुतल्लिक ये सवाल पैदा होता है कि खैर का वजूद तो है, ठीक है, अच्छी बात है, वो तो हमने माना, लेकिन अगर शर का वजूद भी है तो यह सवाल पैदा होता है कि शर का खालिक कौन है, पैदा करने वाला कौन है। अगर ये कहिए कि वही खुदा जिसने खैर को पैदा किया है उसी ने शर को भी पैदा कर दिया है, तो ये बात बहुत बेदस्ती वाली होती है। इसलिए खुदा को तो खैर मुतलक होना चाहिए, उसका काम ये तो नहीं है कि शर को पैदा करे। और अगर ये कहिए जैसा कि मुशीफ मोबाइल कहती है कि खैर के खालिक अलग है, शर के देवता अलग है, तो इस कायनात में इससे डुअलिज्म लाजिब आती है, तनवीयत लाजिब आती है, शिर्क का तस्वूर पैदा होता है। जब खैर शर दोनों किस्म के देवताओं की वह दुनिया में कश्मकश है, क्या जरदुश्त के मतलब व मजहब के मुताबिक यह मानना पड़ेगा कि अरबन अलग भी है, अलग दोनों के ऊपर आई है, यह मानना पड़ेगा। तो बहरहाल ये चीज कुछ समझ में नहीं आती एक ही अपना जो है पुत्र है भी वह शर भी पैदा करे, ये बात जो है फरिश्तों को पैदा करना तो समझ आ सकता है, लेकिन शैतान का भी और मालिक को यह बदला हावी और बन जाता है। जो लोग इसको एक राफी चीज मानते हैं, माफ कीजिएगा ये फलसफे की बातें हैं, इसलिए मैं इसको अफसाना तो नहीं बना सकता, इसलिए इसको सबर के साथ आपको सुनना पड़ेगा अगर आपने मुझे दावत दी इस पर। जो लोग कहते हैं उनकी तकरीर वो भी बात फलसफी भी है, लेकिन इस काल को सबसे ज्यादा जिसने रंगा बेदी के साथ बयान किया है वो एक ईसाई मुतकलम साइड है। वो जैसे कि आप चाहे मामराजी का वर्तवा है इल्म कलाम में, ये वाक्य है उसका भी वर्तवा ईसाई इल्म कलाम में सेंटर साइन का वही है। मुतकलम को फर्जमी कहना कुछ थोड़ी सी जाति तो है, लेकिन हैं तो दोनों एक ही ग्रोह के आदमी। उसने इसको बहुत ही रंगामेजी के साथ बयान किया है और कहा है कि जिस तरीके से नब्बे में जीरो बम दोनों की अहमियत है, जीर भी उसमें अपना मकाम रखता है, बम भी अपना एक मकाम रखता है, बनंदा आगे भी चाहिए बारीक पर भी चाहिए, दोनों से मिल करके नाम मौजूद रहता है। उसी तरीके से खैर शर को अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि नब्बे के जीरो बम की तरीके से इससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं। दूसरी तस्वीर उसने दी है कि जिस तरीके से कि तस्वीर में चार नुकते भी होते हैं, सौ नुकते भी होते हैं, दोनों का अपना एक मकाम होता है, असिल चेहरे का तिल भी एक चीज है जो क्या होता है, उसी तरीके से सब रुकता है, गाँव में हर कदम पे फूल होते हैं, तो बुराए रंग संग रंग से हीरे से चमन, तो इसी तरीके से समझना चाहिए। यह ख्याल आपका मालूम होता है क्या है तो शायराना, लेकिन वाकई है कि इसने बहुत मकबूलियत हासिल की है, तो बहुत से लोग यह समझने लगे कि वाकई यही बात ठीक है। इससे एक सवाल झगड़ा तो खत्म हो जाता है, यानी फिर अरबन और जहदा की बात खत्म हो जाती है, तरबियत का तत्व खत्म हो जाता है, लेकिन ये कि इससे मसला हल हो जाता है ये बात अगर और कीजिए तो मालूम होता है कि बात शायराना है। उसकी वजह यह है कि सवाल ये जो कुछ पैदा होता खैर शर का वो आशिया से मुतल्लक नहीं है, वो तो अखलाकियात से मुतल्लक है ना। अशिया में तो हर चीज अच्छी है, मादन में जवाहरात भी है, बुरे पर खाद भी है, दोनों का एक मकाम है, दोनों अच्छी चीज है, तारीखी भी है रोटी भी है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अखलाकियात में यह सवाल पैदा होता है कि क्या जुल्म और अदल इंसाफ और जवाब समझा झूठ और सच हक और बातिल इन दोनों में से भी किसी को किसी पहलू से राजी करा दिया जा सकता है, यह बदला मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि झूठ बहरहाल किसी हालत में भी अच्छा नहीं हो सकता, जुल्म किसी हालत में भी अच्छा नहीं हो सकता, और अगर फर्ज कर लीजिए कि आप यह कहें एक शख्स अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल देता है तो वो झूठ तो हो जाता अच्छा, लेकिन यह बात नहीं, वह अच्छा नहीं होता, तबाह हो जाता, झूठ रहता झूठ ही है, लेकिन चूंकि उसमें बहरहाल उसकी नीयत एक नीयत थी उसकी वजह से वो गवारा हो जाएगा। उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे खराब चीज आपको खाना हराम है, बुरी चीज है, लेकिन अगर कोई शख्स जान के खतरे में मुबतला और वो खा लेता है हम उसको गवारा कर लेते हैं, ये नहीं होता है कि वो हराम सैयद बन गया, साहिब बन गया, पाक बन गया, बल्कि वो सिर्फ गवारा कर लिया जाता है। अखलाकियात में ये असूल नहीं चलता, अशिया में बन जाता है, इसलिए ये मसले काल नहीं, ये बात शहराना ख्याल है, इसकी कोई बुनियाद नहीं होती। तीसरे ग्रह का जो ये इसको जबिल्ली मानता है या पितरी मानता है, तो उस पर भी एक एतराज पैदा होता है कि जो लोग जो चीजें की जबिल्ली और पितरी होती है वो तो सब में मुश्तक होनी चाहिए। आम तरह से मटन जबिल्ली तौर पर बिल्ली जो है वो शीशे खाती, सेब नहीं खाती। अब ये है कि हर बिल्ली का ही मिजाज है, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, चाहे किसी मिजाज की बिल्ली होती हो। अल्लाह आदम क्या ये बात भी है कि अगर हमारी फितरत भी ऐसी राशक है तो सर खैर शर के मामले में हमारे दरमियान अमरन भी और अखिलतन भी ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, बल्कि सबका मिजाज एक था होना चाहिए। इसलिए कि जिबिल्लत तो फितरत का तका रही, लेकिन ये बात है हर एक के अलग अलग उपाय अलग है, हर एक के अलग अलग राय। तो इसलिए ये ख्याल भी बहरहाल इसमें भी इतना मौजूद है। वो लोग जो ये कहते हैं कि यह बात अकली चीज है, अकल और तजर्बे से मालूम होता है कि क्या ख्याल शर है, ये जमाने का इस वक्त आम फलसफा ही है। इसलिए इस वक्त फलसफी भी बिल्कुल दुकानदार बन गए, तो उनका फलसफा ये है कि आप लोग तजर्बे से है। आज इंसान का तजर्बा यह है कि यह खैर है, कल तजर्बा हो गया फिर शर है। वो तजर्बा से सर सब कुछ है और इसको उन्होंने बड़ी अहमियत दी। लेकिन उन हजरात से भी अगर यह सवाल किया जाए कि क्या अकल ने कोई ऐसी कसौटी बनाई है कि जिस कसौटी पर फर्क करके आदमी अंदाजा कर सके कि ये चीज खैर है और ये चीज शर है, तो पहले फलसफियों के आकर थ्योरी यह थी मसरत खुशी। अपने फलसफियों में चूंकि बाकी दौर है ये, तो वो कहते हैं कि शोधमंदी है फाजिद जो है ये कसौटी है, यानी आम खुशी जिससे हासिल हो वो चीज खाए और आम फायदा जिसमें हो आदमी को अक्सरियत को फायदा हो तो वो है। लेकिन वाकई यह है कि इसको भी अगर तजिया कीजिए तो मालूम होगा कि बहुत बच्चा ख्याल है कि यह फलसफियाना नहीं। कहते हैं कि अगर खुशी के मुतल्लिक सवाल हो कि किस चीज में खुशी है, तो वाकई है कि आवाम की खुशी और खवास की खुशी में बड़ा था। आवाम तो क्या चाहते हैं, वो तो नाच हो, गाना हो, चलना हो, कूदना हो, नारा हो, ये कौन सी चीज है। लेकिन खवास की तो एक चीज नहीं है, खवास के यहाँ तो अकली हो, कारोबार फेल भी हो, तैसी हो, मुश्किलात को कुछ हल करने वाली हो, दुनिया को कुछ महफूज और उससे आराधना करने वाली हो, उसे पसंद भी अलग होगी और मंदी के रूप में अलग से भी और बदाम के अलग से भी। अब आप ये देखिए तो ये मालूम होगा ये जमाने में जो चीजें उनके मुतल बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसकी शोधबंदी के रास्ते बात देखिए। लोग टूटे पड़ते बड़ी मुफरी चीज भी है कहते हैं, लेकिन वाकई है कि मदरत के लिहाज से भी अगर उसकी मदरतों को देखिए, सही अखलाकी पहलुओं को सामने रखकर के देखिए, तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि टीवी के इजाद के बाद अब सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं, काफी रहते काफी कर सकते। अब आपके बस में भी रह गया है कि आप उसको खालिद तालीमी काम पर रखाएं, अगर खालिद तालीमी काम पर रखा दीजिए तो लोग अपने टीवी आपके सर्फ देवाए। अरे पूछता हूँ क्या संभव रहे कि कौमें तो आज अपनी जिंदगी का सारा उसी को समझ रही, जिनके पास है उसकी तानाशाही को क्या पूछना है, वो अपने आगे मेरी उठाते ही हो जाते हैं। जिनके पास नहीं वो राधे मंत्री के हाल रूप आवा है, उनके सारे वसायल सहायक है, सहायक उसकी अद्रकीमत की पहलू से। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि दुनिया एटम बम के बदल आज आपके तबाही के बिल्कुल किनारे को खड़ी है। नहीं कहा जा सकता कि कभी ये पूरी दुनिया भक्त हो जाए। सही है, शोधबंदी की और शरद के नजरिया जो है, एक आम आदमी जिसके समझ होता है उसका और भी राज होता है, खास आदमी और भी राज होता है। इसलिए ये नजरिया पर आना नहीं है, बल्कि मेरे नजरिए को माफ करना ये बैठाना है। अब मैं मुख्तसर तरीके पर मुख्तसरी तरीके पर बता सकता हूं, ये बताऊंगा कि इस्लाम ने क्या छोड़ दिया है। इस्लाम की बात को गौर करते हुए मैं आपको यह दावत देता हूं कि जो एतराज मैंने चारों स्कूलों पर किए हैं उन एतराजात को सामने रख करके उनका गौर कीजिएगा, उसमें एतराजात पैदा होते हैं कि नहीं। अगर नहीं पैदा होते तब तो उसको आपको कबूल करना पड़ेगा, लेकिन अगर पैदा होते हैं तो फिर उस पर आप जरा कर सकते हैं, मैं उसके जवाब देने का जिम्मेदार होगा। इस्लाम इस बात को मानता है कि मुस्तकिल अवतार है सारेश्वर, और यह बात भी मानता है कि जिबिल्ली और फितरी चीज में जो आता है कि फितर पर लाई लेती फतर जात ले आला तब्दील अल्लाह राय कर दे वो पूरे मजबूरी दीन को लेकर के कहता है कि अल्लाह की फितरत है जिस पर अल्लाह ने पैदा किया लोगों को, और कभी ये रवा नहीं है कि अल्लाह की बनाई फितरत को मुतवैर किया जाए। इंसानी नफ्स की तारीफ उसने यह की है कि वह नफ्स हुआ तबा शाहिद है इंसान के नफ्स और उसकी तश्की बराबर, तो उसको इल्हाम किया अल्लाह ने उसकी नेकी भी और उसकी बदी दोनों बता दिए। जो उसको नेकी को कायम करेगा वो फैला पाएगा, और जो उसकी बदी को फैलाएगा वो तबाह होगा। ये काम इसी तरीका से इस्लाम ने यह भी बताया है कि बदी को बदी जानने के मामले में और नेकी को नेकी जानने के मामले में इंसान कभी नहीं समझता है, भले इंसान अजादा से ही वसीला भलो और काम आदिरा, कि वह जानता है कि यह काम बुरा है लेकिन उसके बावजूद भी करता है, जानता है कि यह काम नेक है लेकिन उसके बावजूद उससे अपलब करता है, चाहे वो कितनी सफल शादियां करें कितनी पर्दे डाले, लेकिन देखिए वो बदी के कुलियात के मामले में इंसान इतना कभी नहीं है, वो ये कहता है। लेकिन साथ ही हजरात एक बात याद रखिए, ये वो ये कहता है कि इंसान की जो फितरत है उसमें और हैवानात की जिमिलत में बड़ा फर्क है। हैवानात तो अपनी जिमिलत के मामले मजबूर है, जो उनकी जिबिल्लत बनी है उसी पर चलेंगे। बैल बैल ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, बिल्ली बिल्ली रहेगी, शेर शेर ही रहेगा। ये अलग बात है कि किसी सर्कस में कुछ दिन और ट्रेनिंग करके ऊंट को भी सलाम करना सिखा दीजिए तो ये तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऊंट रहेगा वो भी पहले लेने लगे पकड़ कर। लेकिन इंसान कहा ये नहीं, इंसान की फितरत जो है उसकी आजादी के तहत अख्तियार की जो नहमत मिली है, जिसकी बदौलत वो खुदा का खलीफा बना है और जिसकी वजह से वो मजदूर वलायत हुआ है, और जो इंसान काफी जो है तो उसके बदौलत वो अपनी फितरत के मामले में गुलाम नहीं है बल्कि आजाद है। वो चाहे तो अपने आप को शैतान बना ले और चाहे तो अपने आप को फरिश्ता बना ले, उसके चाहने पर है। वो अगर इरादा करे अपनी तरबियत करे, अपनी इलाह करना चाहे तो आपको यह मालूम होना चाहिए इसी इंसान के अंदर अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक भी बन सकते हैं। और अगर बिगाड़ना चाहे तो उस तरीके के इंसान भी हो सकते हैं कि जैसे आज और जैसे आप अपने भाइयों को इस तरीके से खत्म करते हैं और अपने बच्चों को इस तरीके से खत्म करते हैं कि आज तक दलितों ने भी यह काम नहीं किया, दलितों ने भी यह काम नहीं किया है। तो इंसान का ऐसे फितरत जो है वह आजादी के तहत, ये जिबिल्लत नहीं है, जिबिल्लत तो मजबूरी की चीज है, वो उस पर तो जिस सारे जानवर पैदा कर दिए गए हैं। कहते हैं कि जिबिल्लत जो है हमेशा एक ही रही है, हमेशा एक ही रहेगी, लेकिन इंसान के फितरत में बड़े तायुरात होते रहते हैं। वो चाहे तो अपने आप को बिगाड़ करके बुरा से बुरा बना ले, और चाहे तो अपने आप को अच्छा सच्चा बना ले, खुदा का अपने दूर निरन और अकबूल बच्चा बच जाता है। तो वो ये इतराज पर लिया था, प्रभाव ये है कि वो फितरत के अंदर है लेकिन उसकी नवीयत यह है। अब यह रह गया कि फिर सवाल यह पैदा होता है कि शर कहां से पैदा होता है, शर का वजूद कहां से हुआ। इंसान को तो फितरत तो ठीक है, शर के मतलब जो है तो उसका जवाब कुरान मजीद ने यह दिया है कि शर पैदा होता है इंसान के इरादे अख्तियार के सूए इस्तेमाल, यानी वो अपने इरादे को इस्तेमाल करने में खास इरादे के साथ उसको गलत इस्तेमाल करता है। यह नहीं कि उसको हक मालूम नहीं है, लेकिन वो बातिल के बायस में अगर चाहे तो बेहतर से बेहतर वकील भी हासिल कर सकता है और बेहतर से बेहतर खुद कानूनी मुशाविया कर सकता है। तो इस तरीके से इंसान जब अपने हथियार को गलत इस्तेमाल करता है तो उसके नतीजे बन सकते हैं। इससे बात मालूम हुई कि हथियार की नेमत है तो बहुत बड़ी अजीम नेमत है, इसी का सारा शर्फ है, इसी के बदौलत इंसान इंसान हुआ है, वरना इंसान से दो टांगों पर चलने वाला जानवर बन जाएगा। लेकिन यह हथियार जो है यह शमशीर ददम है, इसकी काट रही है। अगर इस हथियार पर सही इस्तेमाल करे तो इंसान रश के बलाय का है, लेकिन अगर इसको गलत इस्तेमाल करे तो यह शैतान का एजेंट बन जाता है। तो सूर्य इस्तेमाल है। अब इस पर आप यह तो नहीं कर सकते कि इंसान से अल्लाह ताला तो बख्शा क्यों, अल्लाह ताला तो बख्शा है, बहरहाल ये बख्शा है। अगर कुछ गढ़ों ने इसकी नेमत की कदर नहीं की है तो कितने खल्क है कि जितनों ने इसको कदर करके इसके अंदर बड़े बड़े जिल कदर पैगंबर और बड़े बड़े उल्लाह साले मुस्लिम पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए। अल्लाह ताला ने यह फैलाया इंसान को जो तलवार दी है, तलवार से आप चाहो तो घास में काट सकते हो और आप चाहो तो इससे बड़े से बड़े उमदा सुंदर काम भी ले सकते हो। तो वह इसके माने हैं कि सबसे बड़ी नेमत जो इंसान को अख्तियार की मिली है ये उसके सूए इस्तेमाल के नतीजे में पैदा होता है। अब मुमकिन आप पूछे कि फिर ये शैतान क्या चीज है जिसका तुमने नाम लिया है, ये क्या है, इसके मतलब कोई बयान करो। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि शैतान कोई मुस्तकिल मखलूक नहीं है या खुदा के ऊपर उसका इल्जाम है, वो कोई मुस्तकिल मखलूक नहीं है। जिस शैतान ने बाबा आदम को धोखा दिया और जिस धोखे को ईसाइयत के ईसाई आज तक उसका कहते हैं कि इंसान है उससे छूट ही नहीं सकता, उसके मतलब फ्रांसीन ज्यादा के कारण से समझा खाना रखते थे। वो जिन्नात में से था और उसने अपना की नाफरमानी करके अपने लिए शैतान तब गया। जिन्नात और इंसान दोनों एक कहां है, राज अलग अलग है उनका, लेकिन नेकियोंपति के मामले में एक ही है, यानी जिस तरीके से इंसानों के अंदर नेक साले अच्छिया रहात बात पैदा होते हैं, उसी तरीके से जिन्नात के अंदर भी थर्क से प्रयोग पैदा होते हैं। और जिस तरीके से इंसानों के अंदर ऐसे शैतान पैदा होते थे जो शैतान के भी कान काट लेते, उसी तरीके से जिन्नात के अंदर भी ऐसे शैतान पैदा होते हैं कि जो बदतर से बदतर काम कर जाते हैं। शैतान और इंसान और जिन्नात जो है इन्हीं के अंदर से शैतान पैदा होते हैं। कान है मेरे जिन्न से और नाद जो है मेरे जिन्न से और नाद पर प्राप्त था नाद अल नाथ मेरे जिन्न से और नाद के शैतान जिन्होंने से भी होते हैं और इंसानों से भी चाहे तो जिन्नात भी फिर बन सकते हैं, चाहे तो इंसान भी बन सकता है, अपने आप को बना सकता है। ये इंसान के अपने ऊपर सवाल है। इनका वजूद न सही न जिन्नात का कोई अभाव है और न इंसान का वजूद बिदात खुद पर मिले, बल्कि ये तमाम चर्म अपनी है अखलाक पर, किरदार पर, तरबियत पर, इस्लाह पर और अपने हक और अपने इरादे को सही या गलत इस्तेमाल करने को होता है। तो ये ख्याल तो बिल्कुल बचकाना सा ख्याल है कि वही इबलीस, इबलीस तो उसका लकब है भैया, इबलीस उसका लकब है। वह जिन्नात में से था और कुरान ने खुद ही बयान किया है कि वक्त फिर पर भी बदअमली की वजह से ये बात इस मकाम तक पहुंचा। बाकी रह गया कि बजाय खुद उसका कोई मुस्तकिल वजूद नहीं है कि खुदा को पर इल्जाम आए उसका। तो इस तरीका से इंसान जो है नेकी और बदी के मुतल्लिक अब यह बता दीजिए, बता देता है सुनने से लाई कि अल्लाह ताला का यह कायदा नहीं है कि नेकी जो है आप दिल ठोस दे, ये बात और न ये उसने किया है और न ये है कि बदी को तो ऊपर आपको पैदा करे हर एक फितरत इब्राहिम ही पर पैदा किया है। हर बच्चा जो पैदा होता है कुल्लो मौलूद यूलद अल फितरत, वो फितरत इब्राहिम ही पर पैदा होता है। बाकी रह गया कि आप अपनी तालीम अपनी तरबियत से चाहे को जो चाहे बिगाड़े चाहे बनाए, ये है आपका काम है, लेकिन वो पैदा होता है फाले फितरत। अल्लाह ताला ने जो कायदा भी बना दिया है नेकी और बदी में वो भी सुन लीजिए तो बहुत आपको उम्मीद रहेगा कि कायदा यह है कि उससे आपके फितरत में नेकी और बदी अच्छी है। अब अगर आप अपनी नेकी को बढ़ाएंगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत दे रहा, यहां तक कि आप नेकी के आला तरीन मकाम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन नेकी की जो सलाहियत उसने दी आपको, आप उसके साथ अंदर करें, उसके होते हुए बदी को पसंद करें, इसे अख्तियार तो है आपको उसी को पसंद करें, तो अल्लाह ताला आपको उसी रास्ते पर जाने के लिए छोड़ देगा। ये भी इंसाफ के खिलाफ नहीं, आप जिस रास्ते को पसंद करोगे अल्लाह ताला उसमें आपको कार्रवाई कर देगा, इसमें ढील दे देगा, उसमें मदद हासिल कर देगा। तो इसमें भी बिल्कुल आदर के मुताबिक है। तो आप में से जो चाहे वो अपने इरादा करे, ये भी है कि नेकी को ऊपर जब एक मत उसने पैदा कर दिया तो फिर उसके बाद आपका फर्ज है कि उस नेकी को फरोग दे। इसी वजह से सैयद रामसी अलैहिस्सलाम ने खूब बात फरमाई है कि जो ढेले में चोर साबित होते हैं उनको खुदा अशरफी और जमानत नहीं देता। मतलब यह है कि खुदा ने जितना कुछ दिया है आपके अंदर, अगर आप उसके कदर करते हैं तब तो उसकी तरफ से बरकतें नाजिल होती और आपको देखी बढ़ती है। लेकिन अगर उतने की आप हिफाजत नहीं कर सके तो आप नदी धकड़ा सही हो सकते हैं कि आपको अभी अल्लाह को तो बना दिए है, जो आपने पाया था उसका आपने क्या बनाया है, और नदी चाहिए। तो ये एक पहला फ्रेम जो है आपके अंदर रख दिया है, उसको आप रोशन रखेंगे तो फिर उसके बाद आप बटन खोलेंगे तो फौरन वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसको आप बुझा देंगे तो फिर उसके बाद आपकी फितर खुद हो जाएगी और आप देखिए तो खैर का रास्ता पाने से हाथ रह जाएंगे। मेरा ख्याल यह है कि जो बुनियादी बातें है रेखी के खैर के शर के मतलब वो मैंने उसका इतना कथा में रख दिया है। लंबी तकरीर करने की ना मुझे आदत है ना मुझे मश्क है और ना हालवर आप वगैरह शौक में रखते नहीं हो, इसलिए अकूल रही रही अगर जिनों पर भी खैर शर मैं फैसला करने का अख्तियार हासिल है उसको भी इस अपने शोर से नवाजा गया है तो फिर उनको खलीफतुल्लाह नामजद क्यों नहीं किया गया और उनकी तकलीफ की क्या जरूरत थी? यह सवाल जो है इसलिए पैदा होता कि जहां तक कि जिन्नात का तल्लुक है उसका आलम अलग है, हमको उतने ही उनके मतलब मालूम है जितना के प्राण जीत में बता दिया गया है कि जिस तरीका से तुम्हारे अंदर देख होते उसी तरीका से उसके अंदर भी देख होते और जिस तरीका से तुम्हारे अंदर शरीर होते हैं उनके अंदर भी शरीर होते हैं। बाकी रह गया कि उनका आलम अलग है, उनकी जन्नत अलग है, उनके उरूज तरक्की के मकाम अलग हैं, उनके अनपत्ति और दबाव के जो मामला थे उनके अलग हैं। जाहिर है कि अगर उनकी सारी इब्तदा और इंतहा बताई जाए हमारे लिए उसको जानने का कोई जरिए नहीं। इतनी बात तो हम समझ सकते थे कि उनको ये बता दिया गया कि प्राण नजीद की जो अच्छी बातें हैं उनको भी जिनों की एक पार्टी दूसरा उसने कोशिश किया और कहा कि बहुत अच्छी बात है और अपने कौन को सजावट की और यह बात भी बता दी गई है कि उनके अंदर शरीर भी होते हैं शैतान के तरीका से। बाकी रह गया कि उनकी सारी तफसीलात जो है वो हमें बताई जाती तो हमारे जानने का उसके पास कोई जरिया नहीं था, तो ऐसी चीज नहीं बताई है कि जिसको आप जान नहीं सकते। बाकी रह गया कि उनके यहाँ बुलंदी का क्या मकाम होगा वो अल्लाह ताला उनको बताया होगा, वो जानते होंगे। आप खलीफतुल्लाह खुदा के यहाँ मुनासिब तो अदों के सभी कर रही है माल्य उनको किस रात को खुदाने बैठा है उसके देखो को समझा जाहिर है कि अपने नेकी के इलाज में वो भी बुलंद से बुलंद मकामा चार आंकड़ा रहे समझा, जब अपनी बुराई की वजह से सब सब सुना के आता रहे तो उसमें भी होगा, लेकिन हमें उनके आलम के मतलब क्या पता है और अगर बताया जाए तो कैसे आप जाने हो जाए। हिजरत हुई चौकर अगर बली की छूट खुदा ने दी और आखरत में उसकी इतना भी है तो सवाल यह है कि कायनात की संगामराई का मकसद क्या है? बता दे आपको छूट तो दी है उसकी वजह है कि जब आपको अख्तियार दिया है तो अख्तियार देने के बाद आपको मजबूर तो नहीं बनाया जा सकता कि आप उस तरीके से नेकी करें जिस तरीके से एक बैल को तो नेकी करता मुझे हर हालत या मेरा उससे भी ज्यादा बहुत नेकी करता है बड़ी फर्मदारी, लेकिन हम आप तो अख्तियार रखते हैं हमारे अख्तियार की नेकी जो है इसकी सारी अजमत और फजीलत है, अल्लाह ताला ने ये दिया है कितना देगा। और इसी तरीके से अगर आपने अख्तियार के बावजूद नेकी की है तो उसकी सजा भी देगा। और ये बात भी याद रखे कि कुरान ने भी बता दिया है कि अगर आप एक बुराई का इरादा रखते पूरा उसके लिए अज़्म रखते हैं लेकिन खुदावंद ताला ने अगर आपको वो बुराई करने नहीं दी प्रोवोकर सकता है कि ना दे, लेकिन उसका सजा आपको देगा। इसलिए आप उसके लिए एक डिटर्मिनेंट जजमेंट रखते हैं, अपने अंदर करना चाहते हैं, वो तो खुदा ने रुकावट डाल दी है। इसी तरीके से अगर किसी नेकी का आप पुख्ता इरादा रखते हैं, लेकिन हालात की वजह से, वादे की वजह से, रुकावटों की वजह से वो नेकी नहीं कर पाए आप, तो अल्लाह ताला हाजिर देगा, पूरा पूरा हाजिर देगा। चुनाचे आपको मालूम है कि जंगी एयरबोक के मौके पर जो मुसलमान ढाई कोशों के बावजूद जहाज में शरीक नहीं हो सके थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम जिस वादी से भी गुजरे और जिससे प्रांत को भी अपने तय किया है, बाद अल्लाह के ऐसे बंदे भी है कि जो है तो वदीदे भी लेकर हार गिरा रहा है साथ में, उसकी वजह को उनका दिल रहा है। तो जिस बुराई के साथ आपका दिल टका हुआ है, तो क्या चाहे वो न कर पाए कुदरती हालात के वजह से, उस बुराई के साथ उगते ही, और जिस नेकी के साथ आपका दिल टका हुआ है, चाहे वो हालात की वजह से, गुर्बत की वजह से, किसी वजह से न कर सके, वो बीमारी की वजह से, तो अल्लाह ताला उसका अजर देगा। बाकी रहेगा कि शैतान ने वहां जो इनकार किया तो उस इनकार की लत उसको बता दी है, जो इस्तकबार की वजह से, नकली गुरूर की वजह से, तो उसने कहा कि मुझे आग से पैदा किया आपने और इसको मिट्टी से पैदा किया, तो मिट्टी के बालों को मैं कैसे पकड़ सकता हूँ। तो अल्लाह यानी इसमें भी इंसाफ किया उसके साथ, उन्होंने कहा कि अच्छा अब ये जिंदगी का वाजरा, जन्नत का वाजरा तो खत्म, अब दुनिया में जाकर के इम्तिहान होगा। समझा, तो कोशिश करो कि इंसान को साबित कर दो कि खिलाफत टाल गई, और इंसान कोशिश करे कि वो खिलाफत टाल गया, दोनों के लिए रास्ता खुला हुआ है। शैतान पूरी कोशिश कर रहा है कि इंसान जो है खिलाफत के मंसब टाल ले रहे हैं, लेकिन इंसानों का भी फर्ज है, आप लोगों का फर्ज है कि आप ये अपनी कोशिश जारी रखें कि अल्लाह ताला ने जो मकाम आपको दिया है उस मकाम से शैतान आपको महरूम न करा ले। ये दोनों के दोनों अपनी जद्दोजहद में आजाद है। अल्लाह ताला इस मामले में सिर्फ एक रेफरी की हैसियत से देख रहा है, और आजकल के रेफरियों की तरह नहीं, बल्कि पूरे स्टाफ की तरह देख रहा है, हर चीज नोट हो रही है। वो और ठीक फायदा कर देगा कि बिल्कुल ठीक है, इंसान जीत गया समझा, और अगर हार गया है तो अल्लाह ने दोनों से कहा, इबलीसी से मुखातर पर होकर कहा था कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे पैरों से जो इंसानों में से उगड़ा हो गया सबको एक ही साथ जन्म में बैठ दूंगा।
ये आखिरी सवाल है, इसके बाद बाकी सवालों के लिए टाइम नहीं।
قرآن کریم میں والے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت کر دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ مسئلہ خیر و شر ختم ہو گیا ہے، انسان کے اختیار میں اس میں کیا دخل ہے، یہ بات بہت قرآن کی بڑی بڑی صحبت ہے، یہ بات کئی قرآن مجید نے کہی ہے کہ دل لو بے کثیروں میں رہتی بھی کثیرا ہو مائے دل لو بے اللہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ باتوں کو ہدایت دیتا ہے اور باتوں کو گمراہ کرتا ہے اور نہیں گمراہ کرتا ہے، مگر جو نافرمانی کے راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے کان دیے لیکن اس سے سنتے نہیں، جن کو خدا نے آنکھیں دیے لیکن ان سے دیکھتے نہیں، جن کو خدا نے دل دیے لیکن اس سے غور نہیں کرتے۔ سر تو معلوم ہوا یہ بات نہیں کہ چھپا لگا کے کہہ دیا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق کے درجے کا آدمی جنت سے جائے گا اور یہ ابو جہل کے درجے کا آدمی جنت دونوں ہو جائے گی، یعنی دونوں کو نیکی اور بدی دونوں کا شعور دے کر کے اور فطرت کا نور دے کر کہ بھائی جس پاس ارسطو نے جس کو کہا ہے وہ دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے، آپ میں سے جو اس روشنی کو برقرار رکھا جائے گے اس روشنی کو اور بڑھائے گا، اور جو اس کو بجھا دیں گے تو وہ تاریخی بھی کے لیے آپ کو چھوڑ دے گا۔ یہ بہت غلط بات ہے آپ سے، ये बेवकूफ होकर बच रहा है, प्राणी से बच रहा है, प्राणी से बनाई है। अल्लाह ताला हर खल्क़े मोहम्मद अली सभी में ही रहमत है।